Om Shanti. Very good morning. Good morning. Very good. आज बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के राजयोग मेडिटेशन के प्रथम सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। गीता दीदी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आज वो हमारे बीच राजयोग सत्र के प्रथम सेशन की शुरुआत स्वयं की पहचान मैं कौन हूँ इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो हम अनुरोध करते हैं हमारी बहन से कि वो आकर के गुलदस्ते के द्वारा हमारी आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। आदरणीय दीदी जी अब हम सभी के बीच मुखारविंदु से प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
राजयोग के प्रथम सत्र में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी भी खास भारत में आते हैं योग सीखने के लिए और भारत के योगी भी विदेशों में जाते हैं योग विद्या का प्रचार करने के लिए। और अब तो विश्व के 125 से भी अधिक देशों ने योग दिन मनाने का भी लक्ष्य लिया है। लेकिन क्या हम भारतवासियों की बुद्धि में स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसे कहते हैं? अक्सर योग के नाम पर आसन प्राणायाम की देह दमन की शारीरिक क्रियाएं हठ क्रियाएं हम करते रहते हैं जो फिजिकल हेल्थ के लिए है। पर यथार्थ योग जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो वो योग कौन सा है? तो यहाँ जो राजयोग सीखने आप जा रहे हैं उनके आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है, इसलिए सर्व योगों का राजा राजयोग इसे कहा जाता है। जिस योग अभ्यास से हम कर्मेंद्रियों के राजा बन सकते हैं, जीवन के सभी राज जिससे स्पष्ट होते हैं, जहां तक राजयोग की बात है मैं बताना चाहूंगी कि इसमें कोई शारीरिक या औपचारिक क्रियाएं नहीं हैं। राजयोग क्रिया नहीं है, जो हम सीख ले और घंटा आधा घंटा करते रहे। राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। यहाँ एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहाँ योगी जीवन बनाने की बात है। तो प्रथम योग शब्द के अर्थ को हम समझ लें कि जैसे वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना, सेपरेशन। योग का अर्थ है मिलन मनाना, संबंध जोड़ना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, संबंध जोड़। इसलिए योग अभ्यास आरंभ करने से पहले तीन बातों का ज्ञान बहुत जरूरी है। पहला है साधक, योग अभ्यास करने वाले। हम स्वयं साधक कौन हैं? हमें अपना वास्तविक परिचय होना जरूरी है। दूसरा है साध्य, योग किससे लगाना है। वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। और तीसरा है साधना, योग अभ्यास किस विधि से, किस रीति से हमें करना है। तो आज के इस प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। मानव मन का ये प्रथम प्रश्न, को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है, इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिए ही चिंतन किए गए और विभिन्न विचारधाराएं अध्यात्म की उत्पन्न हुई। आपस में हम जब मिलते हैं और एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आप कौन हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय ही एक दूसरे को बताते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, रिलेशन के बारे में बताते हैं, प्रोफेशन बताते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, डॉक्टर हूँ, व्यापारी हूँ, रिलीजियन बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। हमारी कॉन्शियसनेस में भी, हमारी सूक्ष्म स्मृति में भी यही रहता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। स्पष्ट है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, देहाभिमान में आकर जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं। रोज की दिनचर्या में भी आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म हम करते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनकर करते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम और रूप की, आयु की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मिस्टर फलाना हूँ, पता है मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ। शरीर के नाम रूप आयु की कॉन्शियसनेस, कुछ ही कर्मों में आप पाएंगे कि संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं कि मैं इसका पति हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं इनकी सास हूँ। संबंध के अभिमान में व्यवहार करते हैं, कुछ ही कर्मों में हमें प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ऑफिसर हूँ, मिनिस्टर हूँ, उद्योगपति हूँ। इसलिए हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कॉन्शियसनेस इतनी बनी रहती है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम कहते हैं कि मैं एक्स एमएलए हूँ, मैं एक्स मिनिस्टर हूँ। इसलिए हमारी पर्सनालिटी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग बनती जाती है। इस प्रकार धर्म की कॉन्शियसनेस कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इवन जाति की कॉन्शियसनेस कि मैं ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, राजपूत हूँ, भाषा की कॉन्शियसनेस कि मैं गुजराती हूँ, ये मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, इवन नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं जैपनीज हूँ। हम कह सकते हैं कि हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, हमारा जीवन सांसारिक बन चुका है। जीवन का वास्तविक ध्येय आत्मकल्याण जिसे हम भूल चुके हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम मनी एनर्जी देह के पीछे दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे दैहिक संबंधों के पीछे ही खर्च हो रहा है। आप प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब लगाइए, रोज कितना घंटा हम सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं? कम से कम 7-8 घंटा रोज हम सोते हैं। रोज हम नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, रोज हम खाते हैं। कितनी बार भोजन करते हैं? कहने के लिए 3 बार, वैसे तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, चक्की चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि कम से कम 12 घंटे 50% टाइम केवल खाने पीने सोने नहाने धोने के पीछे ही खर्च हो रहा है। अब बाकी बचे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे या घर कारोबार संभालने के पीछे कितने घंटे खर्च होते हैं? 8-10 घंटे। माना 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होते हैं, और वो नौकरी धंधा भी किस लिए करते हैं? अक्सर क्या कहते हैं, पेट के लिए करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना? शरीर निर्वाह के लिए, जीवन आजीविका के लिए, पेट पोषण के लिए करते हैं। अब बाकी रहे 2-3 घंटे पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, टीवी रेडियो इंटरनेट के पीछे खर्च होते हैं। ये हमारी रोज की दिनचर्या है। हमारी इस रोज की दिनचर्या को देखते हुए स्पष्ट होता है कि हम देहाभिमान युक्त सांसारिक बन गए हैं। हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम शरीर हैं? हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देहभान में हम जी रहे हैं, देहाभिमान में आकर कर्म कर रहे हैं, पर क्या मैं शरीर हूं? सोचिए, क्या मैं शरीर हूं? शरीर के बारे में हमें स्पष्ट है कि वास्तव में शरीर क्या है। चित्र में देखिए कि शरीर हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है। जिसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि शरीर प्रकृति के पंच महाभूतों से बना हुआ है। प्रकृति के पांच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर भी मटेरियल है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। जब हम डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। सरल शब्दों में हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर तत्वों से बना है, इसलिए शरीर भी जड़ है, नॉन लिविंग है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ, इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो किससे बना है, किससे बना है? प्रकृति के पांच तत्व से बना है। एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन प्रकृति के पांच तत्व से बनी है। तो जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है, ऐसे शरीर भी एक मटेरियल है, साधन है, इसलिए शरीर परिवर्तनशील है। हम हरेक खुद ही खुद के शरीर के साक्षी हैं कि बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर भी कितना बदल रहा है। बदला है कि नहीं? रोज आईने में देखते हैं ना, शरीर कितना बदल गया है और आखिरकार नाशवंत है, खत्म हो जाता है। हर चीज, हर शरीर नए से धीरे धीरे पुराना होता है और खत्म हो जाता है, पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। तो शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है और नाशवंत है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के लिए हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, क्योंकि शरीर स्थूल है, तत्वों से बना है, हम इन आंखों से देख सकते हैं। लेकिन शरीर से अलग, शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति अति सूक्ष्म है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब तक वो चैतन्य शक्ति है, हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है। हमारा एक दोस्त से संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम तुरंत क्या कहने लगते हैं कि भाई अब जल्दी निकालो, जल्दी तैयारी कर, जल्दी उठा। हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक शब्द में आत्मा कहते हैं। देखने में शरीर आ रहा है, जैसे देखने में बल्ब आ रहा है, ट्यूब आ रही है, हीटर देखने में आ रहा है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होता है। इस प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन वास्तव में चैतन्य शक्ति ही शरीर के द्वारा कर्म करती है, अनुभव पाती है। तो मनुष्य आत्मा शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्व का बना हुआ शरीर और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। प्रश्न आपसे ये है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं? क्या पांच तत्व से बने जड़ शरीर है, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? कौन है, कौन है? क्या उत्तर आता है? हाँ, हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ये सोचना, विचार करना चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती। जब कोई सब्जेक्ट पर अच्छा चिंतन नहीं चलता है तो हम कहते हैं बिल्कुल जड़ हो गया है। सोचना चैतन्यता की निशानी। हम सोचते हैं, हमें इच्छाएं होती है, कोई स्वादिष्ट चीज आप खाते हैं, हमें फिर खाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? चीज खाकर हमने पूरी कर दी है, मुख में वो मिठाई नहीं है, पर जीव द्वारा लिया हुआ स्वाद फिर लेने की इच्छा किसको होती है? जीव को या चैतन्य को? चैतन्य को। हमें स्मृति रहती है। कोई सुंदर स्थान आप देख कर आते हैं, उस स्थान से आप दूर आ गए हैं, आंखों के सामने वो सुंदर दृश्य नहीं है, पर देखी हुई सुंदरता बार बार याद आती है। वो किसको याद आती है? आंखों को या आंख द्वारा देखने वाली चैतन्य शक्ति को? किसको स्मृति आती? हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं होती है, हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है। कोई अच्छा कर्म आप करते हैं, भल कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन होता है, आंतरिक खुशी होती है। कोई गलत कार्य आप करते हैं, किसी को भी पता नहीं है, तो भी दिल खाता है, कॉन्शियस बाइट करता है। माना जो कर्म हम करते हैं हमें अनुभव होता है, हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। अगर हमें किसी के दुख दर्द कष्ट पर जरा भी सहानुभूति ना हो, हमदर्दी ना हो, हमें जरा भी दया रहम ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर दिल, कठोर है, इसको जरा भी दया नहीं है। तो सहानुभूति, हमदर्दी, दया, रहम, प्रेम, ये चैतन्यता की निशानी। इससे सिद्ध है कि मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही है कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, जिसे विज्ञान कॉन्शियस, कॉन्शियंट एनर्जी कहता है, मेडिकल साइंस जिसे स्पिरिट साइकी कहते हैं। सहज शब्द में हम कहते हैं आत्मा। सुनने में ये बात शायद आपको साधारण लग रही होंगी कि बहन जी ये तो हम जानते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं, डेथ होती है, हम श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि में भी कौन से शब्द बोलते हैं, क्या कहते हैं? उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। तो देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन? गई कौन? आत्मा, शरीर तो यहीं पड़ा है ना, शरीर छोड़कर जाने वाली उस आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। पर क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम खुद को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? हाँ? नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि जीवन भर खुद को देह ही समझते रहते, जीवन समाप्त होने पर हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति चले। हम कहते हैं कि लाइट हैज गोन, दीवा बुझ गया, प्राण चले गए। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है लेकिन अनुभव होता है। इसलिए भल सुनने में ये बात जानी हुई साधारण लग रही हो लेकिन ये मूल और मुख्य बात है। इसलिए हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मन ही मन ये अवेयरनेस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी की यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं। आप देखिए हर शुभ कार्य में हम भाइयों को बहनों को सबको भ्रकुटी में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, ये आत्मा स्मृति की निशानी है। लेकिन आज वो ज्ञान हम भूल गए हैं, इसलिए तिलक करते हुए अक्षत कुमकुम लगाते हुए भी हम बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, हम खुद को आत्मा समझते हैं। हम ये सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, हर एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में स्थित होकर बॉडी को चलाती है। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत, ये बॉडी कॉन्शियसनेस। वास्तव में शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम कह सकते हैं कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी आत्मा के लिए दो शब्द यूज किए गए हैं, देही और रथी। देह माना शरीर, देही माना आत्मा। शरीर को रथ कहा गया है, आत्मा को रथी कहा जाता है। इसलिए आप देखिए, जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो कहा जाता है कि फलाने की अर्थी उठी, फलाने की अर्थी ले जा रहे हैं। अर्थी मीन्स जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहते हैं। तो शरीर एक पिंजर के समान है, आत्मा को आत्म पंछी कहा जाता है। तो जीवन का स्वयं के बारे में प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। शरीर पांच तत्वों से बना है और हमें स्पष्ट है कि शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पांव जिसे स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, आंख नाक कान मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। इस प्रकार अब हम ये समझेंगे कि आत्मा किसको कहा जाता है, आत्मा माना क्या है। तो आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन शब्द से आप सब परिचित हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होता है, मन भटक जाता है। तो मन किसको कहा जाता है? जब हम कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, मीन्स क्या होता है? मन भटकता है माना क्या होता है? क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो शरीर से निकलकर भटकती है। मन भटकता है मीन्स क्या होता है? विचार आते हैं, बैठे हैं कोई एक सब्जेक्ट पर सोचने के लिए और हमें अन्य अनेकानेक विचार आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मन भटक रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। तो आत्मा की विचार शक्ति, आत्मा की संकल्प शक्ति आत्मा की मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार उत्पन्न करना। इसलिए सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि हम मन को विचार शून्य नहीं बना सकते। विचार ही न आवे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का कार्य ही सोचना है। हम चैतन्य हैं, उनकी निशानी ही ये है विचार करना। इसलिए मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं, हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं, हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं, पर चिंतन को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए राजयोग में हम मन का हठ क्रियाओं से दमन नहीं करते हैं, हम मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाते हैं। हमें मन को मारना नहीं है। कई बार हम कहते हैं हम तो मन मार कर जी रहे हैं, मन को मारना नहीं है, सुधारना है। इसलिए अगर अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हम व्यर्थ या नेगेटिव सोचते हैं उसको हमें आवश्यक और सकारात्मकता में बदलना है। हमें अपने चिंतन की दिशा को बदलना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। अब हम हरेक अपने जीवन को ऑब्जर्व करें कि अब तक हमने मन का उपयोग कौन से चिंतन में किया। अधिकतर रोज कौन से विचार आते रहते, अब तक बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिक किया है। इसलिए आप देखिए हमें वही विचार बार बार आते रहते हैं। अगर हम अपने चिंतन को चेक करें तो हमें वही नौकरी धंधा समाज संसार शरीर परिवार संबंध वही बातें बुद्धि में आती रहती है ना। तो हम कह सकते हैं कि अब तक बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने मन का अधिक उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही किया। इसलिए वही विचार बार बार आते। अब हमें मन का उपयोग स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में करना है। ये परिवर्तन अब हमें करना है। आपस में हम मिलते हैं। तेरी मेरी दुनिया भर की कितनी बातें करते, हम घंटों इस चिंतन में खर्च कर देते, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। हम कहते अरे 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला, देर रात तक हम बातें करते रहते हैं तो भी उस समय हमें नींद नहीं आती। और यहां हम 5-10 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं तो भी लोग सो जाते, उसमें नींद आ जाती। घड़ी देखते रहते हैं, हमें सुबह में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, इसलिए घंटों हम उसमें लगा दें तो भी नींद नहीं आती है, परेशान नहीं होते। हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, कौन कहाँ जाता है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। पर हम खुद कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, हमें स्व चिंतन करने में, स्व को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए स्व चिंतन में हम स्थित नहीं हो पाते, हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उस चिंतन में मन नहीं लगा पाते। तो ये परिवर्तन हमें करना है कि अब हमें अपना मन स्व चिंतन श्रेष्ठ चिंतन में भी लगाना। तो मन का कार्य है सोचना, 1 मिनट भी मैं अभी अगर आपको शांति में बिठाऊं तो भी आपको अनेक विचार आ जाएंगे कि ये सत्र पूरा होगा फिर हम चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमें अनेक विचार आ जाते हैं। पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं लाते हैं। आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ये सत्र पूरा करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर हम ये करेंगे। तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का कार्य है मन के अनेक विचारों पर निर्णय करना, चूज करना, सिलेक्ट करना, वैल्यूएट करना, ये बुद्धि का कार्य है। इसलिए कहते हैं कि मन घोड़े के समान चंचल है, बुद्धि उसकी लगाम है। लेकिन आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं रही है, शक्तिशाली नहीं रही है। इसलिए अगर हम बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहते हैं, सत्य बनाना चाहते हैं, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, डिविनाइज करना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। परमात्मा ही वो परम शक्ति है जो सदा पावन है, ऑलमाइटी है। इसलिए केवल परमात्मा की याद से बुद्धि शुद्ध बनती है, शक्तिशाली बनती है, दिव्य बनती है। हम कहते भी हैं, गाते भी हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। क्यों हम ये गायन करते? जरूर परमात्मा की याद से बुद्धि शुद्ध बनती है, सत्य बनती है, ये अनुभव हमें है, इसलिए तो हम गायन करते हैं। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, जो कर्म ही संस्कार बनते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, साधारण करते हैं, या बुरे कर्म करते हैं, खुले आम करते हैं, ये गुफा में छिप कर करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्म के संचित प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहा जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। इसलिए व्यक्ति एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार गुस्सा करता रहता है, उनका स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। हम दो बार, दस बार, बीस बार झूठ बोलते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। छोटी 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 चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति बड़ा पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। और हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती। क्या साथ ले जाती है? किए हुए कर्मों का हिसाब किताब संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाता है। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए जब कर्म करते हैं तो हमें अटेंशन देने की जरूरत है। पर अक्सर कर्म करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं। कर्म फल जब भोगते हैं तब हम सोचने लगते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब करते हैं तब अटेंशन नहीं देते। हम हर एक अपने आप को चेक करें, हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते, हम घंटों तेरी मेरी व्यर्थ बातें करते रहते, हम कितने गलत कर्मों में लगे रहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। सहज शब्द में हम स्वभाव संस्कार कहते हैं। अगर हम अपने संस्कारों को चेक करें, हम हरेक पाएंगे कि हमारे संस्कार स्पॉइल हो गए, बिगड़ गए हैं। दूसरों के स्वभाव संस्कार के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स हम देते हैं कि फलाना बहुत अभिमानी है, बहुत गुस्सेल है, बहुत प्रपंची, बहुत झूठा है। खुद को देखना है, हमारे अपने संस्कार स्वभाव आदतें कैसी बन गई है। आपस में झूठा अभिमान होने के कारण हम स्वीकार नहीं करते, महसूस नहीं करते, पर जब हम ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती में भजनों में हम खुद ही गाते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। गाते हैं कि नहीं गाते? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपटी हूँ। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, कन्फेस करते हैं। तो आज हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में पतित, तमो प्रधान, दुखी, अशांत बन गई है। कोई काम वासना के वश, कोई क्रोध के वश, कोई लोभ अभिमान के वश। यहाँ एक और सत्य हमें समझने की जरूरत है कि बेशक हम सभी आत्माएं पतित, दुखी, अशांत, कामी, क्रोधी, लोभी, अभिमानी बन गई हैं, पर ओरिजिनली हरेक आत्मा शुद्ध है, सत्य है। हम कहते हैं इसका स्वभाव बिगड़ गया है, मीन्स ओरिजिनली वो ऐसा नहीं, ये बहुत गुस्सेल हो गए हैं, मीन्स ओरिजिनली गुस्सेल नहीं। हम कहते भी है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मीन्स आता है और जाता है, आ जाता है, आता है और जाता है, आखिर क्या रहता है? शांति। गुस्सा करके भी आखिर व्यक्ति क्या हो जाती है? शांत हो जाती है ना, क्योंकि उसकी ओरिजिनल नेचर शांति है। उसकी ओरिजिनल नेचर गुस्सा नहीं है, गुस्सा आ जाता है, ओरिजिनल नेचर शांति है। इसलिए हम कहते हैं कि अब मिजाज शांत हुआ, आपसे बात करें, हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए हमें सत्यता, स्वच्छता, पवित्रता, सच्चरित्रता अच्छी लगती है। हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती है, स्वच्छता अच्छी लगती है। विषय वासना हमें अच्छे नहीं लगते हैं, पवित्र व्यक्ति अच्छे लगते हैं। हमें बदचलन अच्छी नहीं लगती है, हमें सचरित्रवान अच्छे लगते हैं। क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। हमें शांति अच्छी लगती है या गुस्सा अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? शांति। हमें जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए ना? थोड़ा भी घर में कलह क्लेश होता है, अनबन होती है, मन मुटाव होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है। शांति हमारा स्वधर्म है। पर जब हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को शरीर समझने लगते हैं, तो हमारे में विकृति उत्पन्न होती है, जिसको हम क्रोध कहते हैं। हमें जीवन में सुख चाहिए, न कि दुख। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली प्रेम स्वरूप। इसलिए शरीर से भल कोई बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, हर आत्मा को प्यार चाहिए। क्योंकि आत्मा ओरिजिनली प्रेम स्वरूप है। इवन थोड़ा भी हमें कोई निग्लेक्ट करते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, कोई उदास निराश बैठे रहे वो हमें पसंद नहीं आता है। हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करते। तो ये है हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज, ये हमारी ओरिजिनल नेचर। हरेक आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, सत्य, शांत, पवित्र, सुख, आनंद, प्रेम स्वरूप है। हम ज्ञान पाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। हमें हर बात जानना, सीखना, समझना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें शक्तिशाली, हिम्मतवान, साहसी पसंद है, कमजोर कायर नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं शक्ति है। इसलिए हमें रोज खुद ही साइलेंस में बैठकर खुद को याद कराना है कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सत्य हूँ। हम कह सकते हैं कि शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा में ही समाई हुई है, इससे बाहर नहीं खोजना है। शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो मुझे अपार भीड़ के बीच भी शांति अनुभव होती है, सुख साधनों में नहीं है, साधनों से सुविधाएं मिलती है, पर इन सब साधनों का सुख भी तब महसूस होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो मुझे अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता। आनंद पिक्चरों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। इसलिए जैसे ही आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, आपको खुद में ही शांति आनंद सुख अनुभव होगा। और लास्ट बात कि हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से जो बताया है वो ये साकार मनुष्य लोक है, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, ये प्रकृति के पांच तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है। आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, इसलिए इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, कर्म क्षेत्र है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वैसे तो भूल जाता है, मन बुद्धि के बिस्तर इतने खोल दिए हैं कि जैसे हमें यहाँ से जाना ही ना हो। पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब याद आता है और हम एक दो को कहते हैं, देखो सब कुछ यहाँ ही रह गया, अकेला आए अकेले चले गए। तो कहाँ से आए, कहाँ गए? तो ये फिजिकल वर्ल्ड प्रकृति की दुनिया है, इस दुनिया से हम शरीर लेते हैं और कर्म करते हैं। हमारा असली घर इस दुनिया से दूर है, इसलिए हरेक को जाने अनजाने कभी न कभी इस दुनिया से दूर ऊपर जाने की इच्छा होती है। होती है कि नहीं होती? जीवन में कभी ऐसी बात आती है तो क्या सोचते हैं, इससे तो हम यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। क्योंकि हमारा असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परम धाम है, जहां प्रकृति का छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योति तत्व जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, वो ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। चित्र में सबसे ऊपर सुनहरा लाल अखंड ज्योति तत्व ब्रह्म तत्व दिखाया है, जहां हम आत्माएं अपने ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित है। वो रूहों की दुनिया है, सोल वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। वहां हम अपनी साइलेंट स्थिति में स्थित है। वहां हमें ये फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए आत्मा अपनी मर्ज साइलेंट स्टेज में स्थित है। वहां कर्म नहीं, आवाज नहीं, हलचल नहीं, वो शांति की दुनिया है। ये टॉकी वर्ल्ड है, यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स है, हम आवाज में आते हैं, कर्म करते हैं, वो साइलेंस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य हमें याद रहे कि मेरा असली घर परम धाम है, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से डिटैच अनासक्त रह सकते, और इस शरीर में रहते हुए अगर मुझे ये स्मृति रहे कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, तो देह में रहते हुए भी हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं, हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो राजयोग की पहली प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियस बनना, खुद को आत्मा समझना। तो हम सब आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, ताकि आप थके नहीं। अपना डायरी, फाइल, बैग हाथ में या गोद में न रखें, साइड में रख दें। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज का अभ्यास मैं आपको करा रही हूँ, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। खुद को आत्मा समझते हुए आत्मा दृष्टि से देखते हुए हम मन ही मन स्व चिंतन का अभ्यास करेंगे। हमें साइलेंस में बैठकर स्वचिंतन कैसे करना है, मैं विचार देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में। जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन रिवाइज करेंगे, उसके अर्थ को रियलाइज करेंगे, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, रिवाइज करना है, उसके अर्थ को रियलाइज करना है और उस अनुभव में स्थित होना है। आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, मैं एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, मैं आत्मा शरीर धारण कर कर्म करती हूँ। शरीर एक साधन है जिससे मैं कर्म करती हूँ। मैं इन आँखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, पर मैं मुख नहीं, कान नहीं, आँख नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा, इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, जहां अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। अपने असली स्वरूप में मैं आत्मा सत्य हूँ। चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर शुद्ध पवित्र है। मैं शांत और स्थिर हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा सत्य नित्य अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, शाश्वत सनातन हूँ। मैं आत्मा हूँ, एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति। ओम शांति। ओम शांति।
ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ಗೀತಾ ದೀದಿ ಜೀ ನೆ ಹಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಔರ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಔರ್ ಬುದ್ಧಿ ಔರ್ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಕೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಖರ್ಚ ಕರೇ ಔರ್ ಕೈಸೆ ಕರೇ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಕಾಶ ಡಾಲಾ ಹೈ ಹಮ್ ಗೀತಾ ದೀದಿ ಜೀ ಕಾ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ತೆ ಹೈ।